राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
Ram 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 Ram
श्रीमद्भागवतम स्कंद अध्याय श्लोक क्रमांक 34 देहयमानस्य देहस्य तुमा च अगुरु सौरभ उत्थिता कृष्ण निर्भुक्ता चपदे आहत पापमना। तो अंत में गलत लिखा है थोड़ा, देहयमानस्य देहस्य तुमस गुरु सौरभ उत्थिता कृष्ण निर्भुक्ता सपदि आहत पापमन। देहयमानस्य देहस्य तुमचागुरुसारभ उत्थिता कृष्ण निर्भुक्ता सपदि आहत आत्मन दह्यमानस्य देहस्य तुमच गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्ता सपदि आहत पापमन शब्द अर्थ इस प्रकार है दह्यमानस्य जलाकर क्षार करते हुए
जलाकर क्षार
देहस्य उतना के शरीर का धूम धुआ च तथा अगुरु सौरभ अगुरु जैसा सुगंधित धुआं उत्थिता शरीर से उठा कृष्ण निर्भुक्ता कृष्ण द्वारा स्तन सूसे जाने से सपदि तुरंत आहत पाप मना उसका भौतिक शरीर आध्यात्मिक बन गया अथवा वह भव बंधन से छूट गया। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी के द्वारा चूंकि कृष्ण के उस राक्षसी पुतना का स्तनपान किया था इसलिए जब कृष्ण ने उसे मारा तो वह तुरंत समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो गए, उसके सारे पाप स्वतः ही दूर हो गए। अतएव जब उसके विशाल शरीर को जलाया जा रहा था तो उसके शरीर से निकलने वाला धुआं अग्रु की सुगंध सा महक रहा था। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत का ऐसा ही प्रभाव होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर किसी तरह कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह सारे भौतिक कलमश से तुरंत मुक्त हो जाता है। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवणम कीर्तनम श्रीमद् भागवतम 1:2:17। कृष्ण की लीलाओं को सुनना शुद्ध जीवन की शुरुआत है। पुण्य श्रवण कीर्तन, केवल सुनने तथा कीर्तन करने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। अतः भक्ति करते समय श्रवण कीर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब मनुष्य शुद्ध इंद्रियों से भगवान की सेवा करना शुरू करता है। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते, वह भक्ति कहलाती है जब येन केन प्रकारेण परोक्ष अपरोक्ष रीति से पुतना से स्तनपान कराकर भगवान की सेवा में उसे लगाया गया तो वह तुरंत शुद्ध बन गई। यहाँ तक कि जब उसका दुष्ट भौतिक शरीर जलकर क्षार हो रहा हो गया तो उससे अगरु जैसी अगरु की सुगंध निकली, जो कि अत्यंत अच्छी लगने वाली सुगंधित जड़ी बूटी है। ओम ज्ञानांति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मूल्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्नवश्रवांस श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिधनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री शाखा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वंशाकल्पतरुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णापीष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाकदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी रूपां बुधियास्ताहं प्रपदे। सूर्यशतसमकान्ति अरुणवसन सुबलित प्रकाण्ड देह कमललोचन। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा स्थापित श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है श्री भक्तिवेदांत स्वामी के द्वारा। यह जीवन को शुद्ध करने वाला श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है वो प्राप्त करवाता है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें यह अवसर प्राप्त होता है और उसमें भी इस पवित्र मास कार्तिक मास में श्रवण करना सौभाग्य की बात है। जो सभी मासों में श्रेष्ठ है श्री कार्तिक मास, उसमें भगवान कृष्ण का गुणगान सुनना और करना अति महत्वपूर्ण और जीवन का जो वास्तविक प्रगति भक्ति मार्ग में है वो प्रदान करने वाला होता है। तो आज के इस श्लोक में दह्यमानस्य देहस्य धूम च अग्रो सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त आहत प्राप्मन। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौरिताय की। तो प्रसंग के अनुसार हम सब ज्ञात हैं, जानते हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। जब पुतना का उद्धार लीला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, जब पुतना का वध भगवान कृष्ण ने उनका प्राण सूंस लिया, तब उनका शरीर 12 माइल लंबा हो गया और नंद भवन से बाहर निकलकर वो कंस के बगीचे में जाकर गिर पड़ी और 12 माइल वो उनका शरीर हो गया। क्योंकि असुरों में जो इतनी शक्ति होती है या प्रभाव होता है उसका, वो अपने शरीर को छोटा भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है। तो पूतना का शरीर 12 माइल हो गया। तब नंद महाराज जो मथुरा गए थे कर भरने के लिए, टैक्स देने के लिए, तो मथुरा से वृंदावन या गोकुल में वापस आए, तब वो शरीर पूतना का देखा और आश्चर्य चकित होकर आपस में बात करने लगे कि ये कौन है, ऐसा शरीर हमने कभी नहीं देखा। फिर बाद में पिछले कल वाला हमने श्लोक सुना कि वही ब्रजवासी ने सब मिलकर उस 12 माइल शरीर को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके उनको जलाया लकड़ी में डालकर दूर जाकर। तो जलाया तब उसके बाद वाला आज का श्लोक है। तो जलाया तब इसमें से जो धुआं निकला वो धुआं कैसा था, अग्रु सौरभ। अग्रु जो जड़ी बूटी होता है, जिस तरह चंदन सुखड़ आदि होता है लकड़ा, उसी तरह अग्रु भी होता है जिसमें सुगंध निकलता है। चंदन को घिसने से सुगंध निकलता है, सुखड़ को ऐसे ही रखने से सुगंध आता है और ये अग्रु है जो जड़ी बूटियां उनको जलाने से सुगंध आता है। तो ऐसे अग्रु जैसी जो सुगंध, जो सुंदर सुगंध, मधुर मन को भाने वाला सुगंध है, ऐसा सुगंध पुतना के शरीर से आने लगा। यदि भी देखा जाए तो पुतना तो राक्षसी थे, बाल घातनी, रुधिरासना। सुखदेव गोस्वामी बहुत बहुत शब्द बोले उनके बारे में, इतना शब्द और किसी असुर के बारे में नहीं बताए सुखदेव गोस्वामी, उतना शब्द अब बोले। क्योंकि वो कथा कहते कहते सुखदेव गोस्वामी आवेश में आ गए और वो इतना 6 दिन के जो उनके प्राण थे भगवान कृष्ण उनको मानने के लिए आ गए प्रथम, ये सुखदेव पूर्ण रूप से उनको अपशब्द बोले हैं। रुधिरा बाल घातनी, खेसरी ऐसा सब शब्द उच्चारण किए हैं। तो ऐसा उनका कार्य था और इनका शरीर जलने के बाद ऐसा सुगंध आना सब आश्चर्य की बात थी। लेकिन आज के श्लोक में बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि उस देह दह्य मानस्य देहस्य, कोई विचार करता कि अगर उनकी सुगंध आ रही है तो वो लकड़ा व्रज में जो लकड़ी थी वो लकड़ी की सुगंध आ रही होगी। लेकिन आचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं, वो लकड़ी की सुगंध नहीं, जो देह्य मानस से शब्द पहले उच्चारण करे सुखदेव गोस्वामी, वो इसी बात को सिद्ध करते हैं कि लकड़ी से सुगंध नहीं आ रही थी, उनका देह से ही वो सुगंध प्रसारित हो रहा था पुतना के देह से, और वो उस देह से जो अग्नि और धुआं निकलता था उस धुएं से ही सौरभ अग्रु सौरभ अग्रु जैसी सुगंध आ रही थी। और ऐसा सुगंध क्यों आ रही थी? तो कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण ने उनका स्तन का पान किया था, स्तनम दत्तम। जब पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई तब वो इशारा लगाए अपने स्तन में हलाहल जहर लगाकर आई थी, और वो सोच रही थी कि मैं जब इसको स्तन पान कराऊंगी तो तुरंत वो उसका वध हो जाएगा। तो जब वो भाव से आई थी स्तन पान कराने के लिए, तो लेकिन कृष्ण के जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, कृष्ण तो स्वयं भगवान, वो ऐसा नहीं सोचते। किसी भी भाव से कोई व्यक्ति उनके शरणों में आता है तो उनका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है, चाहे वो जल्दी हो या कुछ देर के बाद या कुछ जन्म के बाद, लेकिन निश्चित रूप से उनका उद्धार होता है। तो कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण ने जब उनका स्तन मुंह में लिया तभी वो पाप से मुक्त हो गए, इस श्लोक से ये पता चलता है। उसका वध होने के बाद वो पाप से मुक्त नहीं हुई, लेकिन जब कृष्ण ने उनका स्तन अपने मुंह में लिया तभी तुरंत ही वो सारे पाप से मुक्त हो गए। तो इसी तरह जब भगवान के संपर्क में कोई व्यक्ति या कोई जीव आता है तो तुरंत या कुछ समय के बाद निश्चित रूप से उनका उद्धार होता है। और श्री प्रभुपाद इसी बात को अपने तात्पर्य में व्यक्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो इस भौतिक जगत में आते हैं या उनका विस्तार तीन स्वरूप में होता है या तीन रूप में वो प्रकाशित करते हैं, एक श्री विग्रह के रूप में, दूसरा श्री नाम के रूप में, और तीसरा श्रीमद् भागवतम के रूप में। ये तीन रूप में भगवान कृष्ण प्रकाशित करते इस भौतिक जगत में जीवों को कल्याण करने के लिए। और वो साक्षात वो अपने मुख से भी कहते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जब माधवेंद्रपुरी को सपने में दर्शन दिया श्री गोपाल जी ने, तब गोपाल जी माधवेंद्रपुरी से कहते हैं, तुम्हारा प्रेम वैसे करिए सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी व सकल संसार। माधवेंद्रपुरी को सपने में आदेश दे रहे श्री गोपाल जी कि तुम्हारे प्रेम वैसे करिए, तुम्हारा प्रेम के कारण मैं तुम्हारी सेवा अंगीकार करूंगा या ग्रहण करूंगा, और दर्शन दिया निस्तारी सकल संसार, और मैं सारे जगत को अपना दर्शन देकर सारे जगत को निस्तार यानी उद्धार करूंगा, पति जीवों को दर्शन देकर उद्धार करूंगा। तो श्री विग्रह के रूप में हम जानते हैं सब कि माधवेंद्रपुरी बाद श्री फिर गोपाल जी को स्थापना करते हैं और उनका भव्य अभिषेक करते हैं, फिर बाद में उनकी सेवा करते हैं और सारे जगत को दर्शन श्री गोपाल जी देकर सारे जगत को उद्धार करते हैं विग्रह के रूप में। और आज भी श्री गोपाल जी या श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में सभी जीवों को उद्धार या दर्शन प्रदान कर रहे हैं। तो इसी तरह श्री विग्रह के रूप में भगवान इस भौतिक जगत में आकर सारे जीवों को उद्धार करते हैं। और कई ऐसे प्रसंग हैं जो विग्रह के सेवा करते समय कई भक्त भी साक्षात्कार किए हैं। तो हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब साक्षात दारू ब्रह्म में श्री जगन्नाथ जी विराजमान रहे हैं, उनका हर हमेशा कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही है। आज भी जो साक्षात जगन्नाथ जी सारे जीवों को मंगल प्रदान करते हैं, ऐसे जगन्नाथ जी का साक्षात्कार आज भी उनके सेवकों या भक्तों लोग करते हैं। तो उसमें से एक उनका सेवक था तालिसा महापात्र, जो जगन्नाथ जी के श्रृंगार आदि उनकी सेवा थी तो सेवा कर रहे थे, और तो नित्यक्रम से उनका सुंदर सेवा भाव से वो सेवा जगन्नाथ जी करते थे। एक समय वहाँ के राजा जो पुरुषोत्तम देव जगन्नाथ जी का सुबह सुबह में दर्शन करने के लिए आ गए दर्शन आरती में, प्राय राजा थोड़े लेट से आते थे, लेकिन उसी एक दिन वो दर्शनार्थी खुलने के तुरंत वो राजा दर्शन करने के लिए आ गए और जगन्नाथ जी को अपने नेत्रों से पी रहे थे और दर्शन कर रहे थे किस तरह श्रृंगार किया, किस तरह उनका वनमाला या फूलमाला पहनाया, किस फूल से बना हुआ है। तो एक एक श्रृंगार का वो दर्शन कर रहे थे चालीसा महापात्र। तो श्रृंगार करते करते जब उस फूलमाला को देखा तो इसमें एक लंबा बाल था उस फूलमाला में। तब तुरंत उस राजा ने बुलाया तालीसा महापात्र को कि ये आप किस तरह सेवा करते हो, इस फूलमाला में ये बाल कहाँ से आ गए इतना बड़ा बाल। तो तालीसा महापात्र बोल दिया तुरंत, ये तो जगन्नाथ जी का है, ये बाल तो जगन्नाथ जी का है। तब राजा तो आश्चर्य से कहते हो जगन्नाथ जी को तो बाल है नहीं, तो आप बोल रहे जगन्नाथ जी का बाल है, नहीं नहीं आप कुछ छुपा रहे हैं, आप अपराध करते हो सेवा में, ये बाल नहीं होना चाहिए, ऐसा राजा तर्क करने लगा। तब तालीसा महापात्र ने कहा आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो कल सुबह दर्शन आकर आप मंगला आरती में दर्शन कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जगन्नाथ जी का सुंदर केश है क्या नहीं। तब राजा ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ, कल आकर मैं देखता हूँ जगन्नाथ जी के बाल है क्या नहीं। तो तालीसा महापात्र तो फंस गया, अब क्या किया जाए, और बस जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगा कि इस परिस्थिति से कैसा मेरा उधर होगा, आप ही कुछ उपाय बताइए या आप ही कुछ उसके बारे में कुछ कीजिए। वो पूरा रात भर जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने लगे और रोते रहे, और सुबह जब मंगला आरती का समय आया तो तालीसा महापात्र गए जगन्नाथ जी को फिर से प्रार्थना करने लगे जगन्नाथ जी के सामने आकर। और फिर बाद में वो राजा आए, जब पट खुला तो जगन्नाथ जी का और बलराम जी का बड़ा बड़ा केश का दर्शन हुआ सभी को, राजा को और साथ में सभी भक्त जो आए थे उन सबको बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर घुंघराल बाल जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ सभी को। तो राजा तो आश्चर्यचकित हो गए कि कल तो था नहीं, आज एक रात में इतना बड़ा बाल जगन्नाथ जी को कहाँ से आ गए। वो तो सोचने लगे और साथ सोच वो मन में विचार में या नक्की ये तालीसा महापात्र ने कुछ छिपका दिया है कहाँ से लाकर बाल, और कुछ ऐसा कर दिया। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि जगन्नाथ जी का बाल ऐसा है क्या नहीं। तो जाकर जगन्नाथ जी के पास जाकर उसने खींचा, जब थोड़ा पकड़ कर हाथ में खींचा तो तुरंत लोहे का खून का पिचकारी निकला वहां से जगन्नाथ जी के विग्रह से। तब राजा को ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं ये तो वास्तव में अपराध कर दिया, जगन्नाथ जी का तो बाल है सत्य में। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को रक्षा भी करते हैं और अपना आदान प्रदान करते हैं और साथ साथ में सारे जीवों को उद्धार भी करते हैं। और वास्तव में विग्रह की सेवा जो है भगवान की असीम कृपा है, जो विग्रह रूप में सारे जीवों को कल्याण करने के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि विग्रह से कई प्रकार के जीवों का कल्याण होता है। एक तो उनको भोग लगाकर जो प्रसाद के रूप में उनकी कृपा प्राप्त करते हैं सभी भक्त, सो जगन्नाथ में प्रख्यात है उनका महाप्रसाद जगन्नाथ जी का, और प्राय सभी मंदिरों में भगवान का भोग लगता है और भोग लगने के बाद वही भगवान के प्रसाद रूपी कृपा को सभी भक्त ग्रहण करते हैं, और प्रसाद ग्रहण करके सभी भक्त व्यक्ति का या जीव का हृदय परिवर्तन होता है या कलमश से दूर होते हैं। और साथ साथ में प्रणाम करने से भी व्यक्ति का पाप का नाश होता है, मन मनाभो मद भक्तो विद्या जिमाम नमस्कारो। अगर विग्रह के रूप में भगवान नहीं होते तो किसको नमस्कार करते। तो इस नमस्कार करने से भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीव का कलमश दूर होता है। और साथ साथ इतना भी नहीं, जो भगवान को भोग लगाते उसमें जो सामग्री लगती है भोग बनाने में, जो गेहूँ चावल शक्कर आदि जो भी लगता है, ये कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावना विज्ञान ऐसा है को जो चावल या गेहूँ जिसने उगाया है, जो किसान ने उनका उगाया हुआ चावल या गेहूँ भगवान की सेवा में लगता है तो उनको भी कुछ प्रसन्न उनको फायदा या लाभ प्राप्त होता है। भगवान का भोग लगाने से इतना महत्व है। जिस किसान ने जो खेत में चावल बोया है या उगाया है उनको प्राप्त किया है उसी का ध्यान अगर भगवान की सेवा में लगता है, ये न कि प्रकार है, उसी का ध्यान उनको भगवान की सेवा में या भोग में लगता है तो उनको भी उस फल प्राप्त होता है या उनकी स्वीकृति बनती है। तो विग्रह का ऐसा प्रभाव है और विग्रह की ऐसी सेवा करने से सारे जीवों का मंगल होता है। उनका प्रसाद ग्रहण करके, उनको नमस्कार करके, उनको प्रसाद बनाने के भोग लगाने से, उनका श्रृंगार करने से सारे भक्त, कई भक्त लगे हुए हैं श्री विग्रह की सेवा में, श्रद्धा से सभी सेवा करते हैं। तो इसी तरह विग्रह की सेवा में, सेवा से भक्तों का या जीवों का मंगल या कल्याण होता है। तो इसी तरह एक और भी एक कथा है। एक ब्राह्मण था जो बहुत गरीब था, वो भगवान विष्णु की सेवा विग्रह का रखकर अपने घर में और सेवा करता था और बहुत गरीब था। हर रोज वो भगवान विष्णु को भोग लगाता था, नित्य प्रकार जो सेवा होती हो सेवा करते थे, और सरल हृदय का था वो, और कई सालों से सेवा कर रहा था भगवान विष्णु की, और उनकी दरिद्रता भाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। तो उनका एक पड़ोसी में था, वो देवी भक्त था, शाक्त था, वो दुर्गा की पूजा करता था, वो बड़ा धनवान बनता जा रहा था धीरे धीरे करके देवी की पूजा करके। तो धनवान बन के वो बोला, तू क्या कितने सालों से भगवान की विष्णु की सेवा करते हो और दिन प्रतिदिन दरिद्र होता जा रहा है, मेरे तरफ देख, मैं दुर्गा की पूजा करके दिन प्रतिदिन मेरा धन बढ़ता जा रहा है, तू ये छोड़ दे विष्णु की सेवा करना, दुर्गा की सेवा कर तो तू सुखी होगा। तो पहले वो ध्यान नहीं दिया उस बात पर, लेकिन वो सरल हृदय का था ब्राह्मण दरिद्र, तो बहुत वो बार बार वो कहने लगा इसी तरह। तो बार बार कहने से कोई भी व्यक्ति प्रभावित या उनके दिमाग में बैठ जाता है। जिस तरह हम सुनते हैं कि अब बकरी लेकर जा रहा था, बोला अब क्या लेकर जा रहे हो, तो बोला कि बकरी नहीं है, शेर है। तो दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, तो सचमुच मान लिया कि नहीं ये शेर ने फेंक दिया, तो वो उठकर चला गया, उनको चाहिए था वो बकरी। तो इसी तरह बार बार कहने से व्यक्ति के दिमाग में वो बात फिट हो जाती है। तो इसी तरह जो सरल ब्राह्मण था उसको ये बात फिट बैठ गए कि नहीं नहीं अभी बहुत साल हो गया कि विष्णु की सेवा करते करते लेकिन कुछ फल प्राप्त नहीं होता है, तो इससे अच्छा है माता दुर्गा की सेवा करो। तो छोटा विग्रह दुर्गा माता का लाया और उनका एक ही घर था, उसमें एक ही कमरा था, उसमें आधा पार्टीशन कर दिया, पर्दा लगा दिया कपड़ा का, और विष्णु की सेवा छोड़ दी और माता दुर्गा की सेवा वो करने लगा। तो दुर्गा की सेवा करता दो तीन चार दिन सेवा किए और अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे सुगंधित, तो उनको ऐसा लगा कि दुर्गा की मैं सेवा करता हूँ, उसकी अगरबत्ती की सुगंध उस विष्णु को जाती होगी, वो भी नहीं जाना चाहिए। तो एक कापूस लेकर गया और विष्णु के नाक में डाल दिया, ये अगरबत्ती की सुगंध नहीं जाना चाहिए। जैसे वो नाक में डाला तुरंत भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, अरे वो तो आश्चर्यचकित हो गया ब्राह्मण, अरे ऐसे कैसे, मैं कई सालों से आपकी सेवा कर रहा था तभी प्रकट नहीं हुए, और जब नाक में मैं रुई डाल रहा था तब आप प्रकट हो गए। तब भगवान ने कहा कि तुम कितने सालों से सेवा करते थे वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो भाव है वो अभी प्रकट हुआ, तुम सोचने लगे कि मैं साक्षात यहाँ विराजमान हूँ, इसलिए तुमने मेरे नाक में रू डालने की भावना या इच्छा प्रकट की, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर आपके सामने प्रकट हुआ। तो इसी तरह भगवान की सेवा या विग्रह की सेवा करने से भक्तों के साथ आदान प्रदान, कई ऐसी लीलाएँ हैं साक्षी गोपाल की, शीर्षवर गोपीनाथ की, माधव, ऐसे भगवान विग्रह के रूप में आकर सारे जीवों को मंगल प्रदान करते हैं। और विशेष है अपने इंद्रिय प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में इंगित किए हैं, ऋषि कहने सेवन भक्ति उच्चते, तो इसी से भक्ति प्रारंभ होता है। जब नाम जप और भागवत श्रवण के बाद जब अपनी इंद्रिया, हमारी इंद्रिया भगवान की सेवा में लगाते हैं विग्रह की सेवा में, तब हमारी इंद्रिया भी शुद्ध होती है। तो ये भगवान की कृपा से विग्रह के रूप में सारे जीवों को मंगल प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं और आशीर्वाद देने के लिए हर हमेशा खड़े रहते हैं। भक्त साहब किसी भी तरह उनकी सेवा करें वो स्वीकार करते हैं, और भावपूर्ण जब भक्त सेवा करते हैं तो उनके साथ आदान प्रदान भी करते हैं। ऐसी कई घटनाएं उड़ुपी में एक कनक किंडी नाम का कनक नाम का एक भक्त था जो भगवान के अनन्य भक्त था वो, और भगवान का दर्शन करने के लिए वो मंदिर में नहीं जाते थे, पीछे से दरवाजे से वो हमेशा छोटा सा लकड़े का किवाड़ होता है उसमें से थोड़ा सा दर्शन उनको हो रहा था, लेकिन भगवान मुख्य द्वार पर उनका मुंह था जो अभी विराजमान है बाल गोपाल कृष्ण उड़ुपी कृष्ण, तो मुख्य द्वार पर उनका मुख था भगवान का। लेकिन यह कनक नाम का भक्त जब दर्शन करने के लिए रोज आता था, लेकिन उनको ठीक से दर्शन उनका पीठ का भगवान का दर्शन हो रहा था और ठीक से भी नहीं, तो भगवान सोचने लगे कि ये रोज दर्शन करता है और मेरा दर्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो एक बार भगवान वो घूम गए मुख्य द्वार से पीछे के द्वार पे, वो घूम गए, आज भी वो दर्शन उल्टा है, मुख्य द्वार से आप आएंगे तो भगवान के पीठ का दर्शन होता है और वहाँ वो किंडी बना दिया, उनकी खिड़की छोटा बना दिया, उसी से सब भक्त का दर्शन आज भी करते हैं, उनका नाम ही हो गया कनक किंडी, किंडी बोलते हैं उधर। तो इसी तरह भगवान भक्त को आदान प्रदान करने के लिए, दर्शन देने के लिए अपना स्थान भी परिवर्तन कर देते हैं। तो इसी तरह श्री विग्रह की सेवा करने से भगवान के साथ जो भक्त का भाव है वो प्रकट होता है, तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये भी प्राप्त हो रहा है, और से विग्रह की सेवा करना, उनको भोग लगाना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। और दूसरा है भागवत श्रवण, भागवत के रूप में भगवान साक्षात प्रकट शब्द रूप में होते हैं, ये भागवत ही भगवान का वांग्मय स्वरूप है। प्रभुपाद इसी बात को रखे हैं कि श्रुणताम स्वकृष्ण श्रुणताम स्वकथा कृष्ण पूर्ण श्रवण कीर्तन, भगवान कृष्ण की कथा सुनने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। और श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में पहला आयत 14 नंबर श्लोक में कहते हैं कि आपन संस्कृतिम घोरा यन्नाम विवसत कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलय नष्ट दशाम येष पुराण अर्क अधुना उदित। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद तीसरा अध्याय 43 नंबर का श्लोक, कृष्ण स्वधाम उपगते, भगवान कृष्ण जब इस स्वधाम इस भौतिक जगत से अपने धाम में गए तब इस भागवत रूपी शब्द रूपी ग्रंथ में वो प्रकट किए, और वो प्रकट करके क्या किया तो कले नष्ट दिशाम यश, सारे जीवों का कलमश नष्ट करने का उसमें प्रभाव है या शक्ति है श्रीमद् भागवतम में। और किस तरह पूर्ण अर्क अधूना उदित, जिस तरह सूर्य उदय होता है और सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम का उदय हुआ और सारे जीवों का जो अमंगल है वो नष्ट हो जाता है। जो कोई व्यक्ति इस भागवतम का स्मरण करता है या कीर्तन करता है तो उनके जीवन में मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार, क्योंकि भागवत रूप में ही भगवान कृष्ण प्रकटित हुए हैं। तो प्राय इसका भी कई उदाहरण है, श्रीमद् भागवतम श्रवण करके कई लोगों का जीवन का परिवर्तन हुआ है, और खास करके हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्री प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रथम बार उतरे और वहाँ का वातावरण देखा, तमोगुण के आवृत सभी लोग, तब प्रभुपाद मन में सोचने लगे कि किस तरह इस लोगों का उद्धार होगा, मैं किस तरह इन पतित जीवों का हृदय परिवर्तन करूँगा कर सकूँगा। तब उसी के प्रभुपाद के मन में ये श्लोक उदित हुआ और उसको उच्चारण किया कि नहीं नहीं, भगवान कृष्ण की अगर कोई कथा श्रवण करेगा तो निश्चित रूप से उनका उद्धार या उनका हृदय का परिवर्तन होगा ही, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है कि जो अनेक जन्मों से जीव के हृदय में जो हृदय में ग्रंथि लगी हुई है उस ग्रंथि को छेदन करने का शक्ति श्रीमद् भागवतम में है। और विशेष श्लोक को श्री प्रभुपाद ने अपने कविता में भी रखा है, क्योंकि इस श्लोक से प्रभुपाद को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से इस भागवत का श्रवण में उन जीवों को या उन लोगों को करवाऊंगा तो उनका उद्धार अवश्य होगा। तो इस तरह श्री भगवान श्रीमद् भागवत के रूप में इस जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकटित होते हैं, यह दूसरा। और तीसरा नाम के रूप में, कलिकाल नाम रूप कृष्ण अवतार, उसका भी पुष्टि हुई है श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद पहला अध्याय 14 नंबर श्लोक में, आपन संस्मृति घोरा यन्नाम विवस्व गुरुणान तथा सद विमुच्यते यद विभेति स्वयं भयम्। आपन संस्कृति घोरा, जीव का संस्कृति यानी स्वभाव कितना भी घोर हो या कितना भी दुष्स्वभाव हो, फिर भी यन्नाम विवस्वत गुणा, भगवान का नाम कोई विवेश पूर्वक या अवहेलना पूर्वक कोई ग्रहण करता है या उच्चारण करता है, तत् साधो विमुच्यते, तुरंत उनका विमुच्य जाते हैं, उस कलमश से वो मुक्त हो जाता है। और नाम से, नाम का इतना प्रभाव होने के कारण व्यक्ति का कितना भी हृदय दूषित हो या कलमश से आवृत हो, जब कोई व्यक्ति नाम ग्रहण करता है तो उनका उद्धार या कलमश से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कलयुग में नाम के रूप में भगवान प्रकटित होते हैं। कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, नाम है ते कृष्ण जगत निस्तार, इस जगत का निस्तार करने के लिए भगवान कृष्ण ही नाम के रूप में प्रकटित होते हैं। तो इसी श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के नाम में और उनके साक्षात में कोई अंतर नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही नाम के रूप में प्रकटित होते हैं। तो इससे व्यक्ति कोई भी कुछ भी ना करे, लेकिन भगवान का नाम अगर कोई ग्रहण करे या उनसे उच्चारण करे या कीर्तन करे, तो उनका भी इस भौतिक जगत से जो उनकी आसक्ति है उनको छोड़कर या उनका हृदय में जो कलमश है वो तुरंत दूरीभूत होकर वो भगवत धाम की अग्रसर हो सकेगा या होता है। तो ऐसे नाम की महिमा का भी कई उदाहरण है जो हम जानते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर के जो है 300,000 नाम जप करते थे, लेकिन उनके 5 जो वेश्या आई वो भी उस नाम को सुनकर, नाम के प्रभाव से जब 3 दिन वो लगातार हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त के मुख से जब नाम सुना, उसने खाली श्रवण किया, तो श्रवण करने से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और परिवर्तन होकर वो महान एक भक्त बन गए। चैतन्य चरितामृत में उसका भी वर्णन विस्तार से, जब वो इतनी महान भक्त बन गए तो उनका दर्शन के लिए कई साधु पुरुष आने लगे, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत बुरा होता है और वो उनका परिवर्तन होता है तो लोगों को श्रद्धा और विश्वास होता बढ़ जाता है कि भगवान में, भगवान की शक्ति में कितना प्रभाव है, तो इतना दुष्ट व्यक्ति जो था उतना कैसे परिवर्तन हो गया। जिस तरह हम सुनते हैं वाल्मीकि ऋषि जो पहले वो डाकू थे, लुटा रहे थे, लेकिन भगवान राम का नाम उच्चारण करते करते उल्टा नाम जपा हो मरा मरा करके भी उनका उद्धार या उनका वो ब्रह्म पद प्राप्त कर लिए, ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त कर लिए श्री वाल्मीकि ऋषि नाम के प्रभाव से। तो ये नाम के रूप में भी भगवान कृष्ण सारे जीवों को मंगल प्रदान करने के लिए आते हैं। तो 3 स्वरूप में भगवान इस भौतिक जगत में प्रकटित होते हैं, विग्रह के रूप में, नाम के रूप में और श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो आज का मुख्य सार यही है कि श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि यह न के न प्रकार है, किसी भी प्रकार कोई व्यक्ति इन 3 में से एक के संपर्क में कोई आता है तो निश्चित रूप से उनका उद्धार होता है। जिस तरह यह पूतना का कोई भाव नहीं था कि मैं भगवान की सेवा करूं, लेकिन वो उनको मारने के लिए भाव से, मारने का भाव लेकर गई थी पूतना, फिर भी भगवान ने उसका उद्धार किया, क्योंकि उसका स्तन भगवान कृष्ण ने अपने मुंह में ग्रहण किया था। और वो इतनी परम भाग्यशाली या परम गति को प्राप्त कर ले कर गए पूतना, जो बड़े बड़े मुनि को वो गति प्राप्त नहीं होती है। तो इसी तरह उतना जहर लेकर गई भगवान कृष्ण के पास और उनका स्तन देते ही उसी समय उनका सारे पाप नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद जब भगवान ने उनका वध किया, उनका प्राणी सूस लिया, तब उनका शरीर भी साथ साथ दिव्य बन गया। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब इस भौतिक जगत में इस शरीर जो हमारा शरीर है, पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ यह शरीर, और इसमें क्या है त्रिधातु कफ वात और पित्त, ये अष्ट धातु से हमारा शरीर बना है। जब ये जलाते हैं या कुछ सड़ता है तो इतना दुर्गंध आता है कि कोई व्यक्ति अगर 100 फीट वहाँ से खड़ा है दूर, तो भी वो वहाँ खड़ा रह नहीं पाएगा, उतना इस शरीर से दुर्गंध आता है। अगर 5-6 घंटा अगर शरीर पड़ा रहा मृत्यु के बाद, अगर उनमें से प्राण निकल गया और शरीर किसी कारणवश पड़ा रहा, तो उसमें तुरंत कीड़े पड़ जाते और दुर्गंध मारना शुरू करते। ऐसा यह मनुष्य शरीर है। तो ऐसा शरीर प्राप्त करके और इतने भी उसमें भी ये इतने दुष्ट पूतना, तो उनका शरीर जलने से उनका सुगंध आने लगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब कोई भक्ति या भगवान के संपर्क में कोई आता है व्यक्ति और सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उनका शरीर भी दिव्य बन जाता है। प्रायः हम देखते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो कोई सन्यासी या गुरुपद पर है, उनका शरीर जब सूटता है तब उनका देह तो पालकी में बिठाकर भगवान के मंदिर में उनको दर्शन करवाते हैं। जानते हैं ना भक्त लोग, जब महाविष्णु महाराज जब इस भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में अपना शरीर त्याग किए, तब उनका शरीर लेकर पालकी में बिठाकर इस राधा गिरधारी में परिक्रमा करवाए, फिर बाद में उनको उनकी समाधि दिया नासिक में। तो उनकी इच्छा थी नासिक में उनकी समाधि हो, तो वहाँ उनकी समाधि दिया। अगर इस शरीर को जब सूट जाता है या उनसे प्राण निकल जाता है और उनकी आरती जाती है और कोई भक्त उनका दर्शन कर लेता है और उनको मंदिर में आना होता है, तब उनको स्नान करके आना पड़ता है। ऐसा विधि है, नियम है। अगर हम रोड पर जा रहे हैं और किसी का आरती जा रही है, शमशान यात्रा जा रहे हैं, और सबका किसी ने दर्शन देख लिया और उनको मंदिर में आना है दर्शन के लिए, तो उनको स्नान के लिए जाना पड़ता है, फिर बाद में शुद्ध होकर मंदिर में आना पड़ता है। लेकिन ये भक्ति के प्रभाव से देखिए, इस शरीर छूटने के बाद हमारे आचार्य ने, हमारे जो गुरुपद पर है या आचार्य है, उनको भगवान के सामने विग्रह में दर्शन करवाने के लिए लाते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भक्ति के प्रभाव से उस भौतिक शरीर जो भौतिक नहीं रहता है वो दिव्य बन जाता है। दिव्य बनने के कारण उसी शरीर को भगवान के सामने दर्शन करवाते हैं और उसी शरीर को फिर मंदिर में ही, मंदिर के प्रांगण में ही उनको समाधि दिया जाता है। प्रभुपाद की समाधि हम देखते हैं ना, वृंदावन मंदिर के प्रांगण में ही है। प्राय सभी महाराज जो हमारे परंपरा में आचार्य में हुए हैं, उनका समाधि प्राय मंदिर के प्रांगण में ही है। तो ये भौतिक शरीर जब तब नहीं रहता है, जब पूर्ण रूप से व्यक्ति अपना जीवन कृष्ण को समर्पण कर देता है, तब उनका शरीर, ये जो भौतिक शरीर से त्रिधातु से बना है, जो दुर्गंध मारने वाला है, वो दिव्य बन जाता है। और उनका मृत शरीर से भी कोई व्यक्ति उनका दर्शन कर ले तो उनका भी मंगल होता है। यहाँ तक कहा जाता है शास्त्र में, जब कोई भक्त का शरीर जलता है, उनका धुआं किसी पर पड़ता है या दूर कहीं खड़ा है और उनका धुआं थोड़ा भी जाता है, तो उनका भी मंगल होता है। तो ऐसा प्रभाव है इस भक्ति का। भगवान कृष्ण के संपर्क में कोई व्यक्ति या कोई जीव आता है और जब संपर्क में आता है तो धीरे धीरे करके क्रमशः जब भक्ति में आगे बढ़ता है, तो उनका शरीर ऐसा अवस्था प्राप्त कर लेता है एक समय, जो दिव्य बन जाता है। तो भगवान के पूर्ण रूप से समर्पण करने के बाद, ऐसे हमारी तरह नहीं, जब गुरु पद पर होता है या आचार्य होता है आचार्य पद पर, उनका शरीर, क्योंकि उनका पूरा जीवन भगवान की कथा में, श्रवण करने में, भगवान की सेवा में लगा दिया है, पूर्ण रूप से त्याग करके अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, ऐसा आचार्य ऐसा गुरु जो अपना शरीर अपने आप दिव्य बन जाता है, और प्रायः वो शास्त्र में भी स्वीकार किए हैं, इसलिए तो मंदिर में लाकर उनको परिक्रमा करवाते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं और उनका मंदिर के प्रांगण में उनका शरीर का समाधि भी देते हैं। तो इसी तरह ये भक्ति का इतना प्रभाव है कि जो कोई व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार है भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है, नाम के संपर्क में या भागवत के संपर्क में या श्री विग्रह के संपर्क में, तो उनका निश्चित रूप से कभी ना कभी उनका मंगल ही होता है और उनका उद्धार भी होता है। इतना दुष्ट होने के बाद भी पूतना परम गति को पा ले, वो अगले वाला कल वाला श्लोक में आएगा। सुखदेव गोस्वामी किस तरह कहते हैं कि रुधिरा बाल घातनी थी फिर भी वो परम गति पा ले। और अगर कोई प्रेम से अगर भगवान कृष्ण की सेवा करता है तो उनकी गति क्या होगी, वो अपने आप शास्त्र भी कहते हैं। निश्चित रूप से वो भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो पुतना के शरीर को जब काटा और उनको जलाया तब उनके शरीर से आज के श्लोक में अग्रु जैसी सुगंध आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका स्तन का पान किया था, पान करने के कारण तुरंत वो सारे पाप से मुक्त हो गए। तो सारे पाप से मुक्त होने के कारण उनका शरीर दिव्य बन गया और शरीर दिव्य बनने के साथ साथ भगवान कृष्ण उनके शरीर पर खेलने लगे। 6 दिन के भगवान कृष्ण उनके शरीर पर खेलने लगे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चिंतन में भगवान का चरण नहीं आते हैं, वह भगवान साक्षात पूरे शिव विग्रह के साथ उनके शरीर में पुतना के शरीर में खेलने लगे। तो क्यों ना पुतना इतना पवित्र उनका शरीर हो जाएगा, क्योंकि भगवान का शरण जहाँ स्थापित होता है, जहाँ होता है वहाँ निश्चित रूप से पवित्र बन जाता है। जो भगवान विष्णु के वामन देव के भगवान के शरणों से निकली हुई गंगा सारे जगत को पवित्र करती है, तो इसी तरह साक्षात भगवान जिनके शरीर पर खेलते हैं उनका शरीर क्यों ना पवित्र हो, उनके शरीर में क्यों ना ऐसा सुगंध आए। तो इसी तरह पुतना का प्रसंग भी समाप्त होने वाला है और पुतना परम गति को पा ले। जो धात्री गति माता यशोदा की तरह जो भगवान की सेवा करने को उनको गति, जैसे माता यशोदा जैसी उनकी गति प्राप्त नहीं हुई, लेकिन धात्री दासी के रूप में माता यशोदा दासी के रूप में उनको गति प्राप्त हुई। तो ये भगवान की भक्ति करने से सारे जीवों को मंगल होता है। ये आज का श्लोक उत्साहदायक है भक्तों के लिए। जो किसी ना किसी प्रकार है कोई भगवान कृष्ण के संपर्क में आता है तो निश्चित रूप से उनको मंगल ही मंगल होता है। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये तीनों जो भगवान के स्वरूप है उनको प्राप्त करने का या सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, विग्रह का, नाम रूप का और भागवत श्रवण का। तो ये प्रभुपाद की असीम कृपा है, हमें ये तीनों अवसर देते हैं, दिया है। तो इसका लाभ उठाकर अपना जीवन मंगल बनाने का प्रयास करना चाहिए और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और साथ साथ में हमें भी आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भी इस भक्ति मार्ग में कुछ प्रगति कर सके। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो शुद्ध शिव प्रभु संत गुरु प्रभु है, उनसे पूछ सकते हैं। वैसे आज के समय में ऐसा असुर भी नहीं है, आपको प्रमाण कैसे मिलेगा? असुर भी ऐसा तपस्या करके ये शरीर ऐसे नहीं बनता है, बहुत सालों तक उसने तपस्या किया होगा तब ये सिद्धि प्राप्त होती है। तो कौन आज के समय में इस कलयुग में इतनी तपस्या करता है इस सिद्धि प्राप्त करने के लिए? लेकिन थोड़ा बहुत होता है, प्रभुपाद आगे के श्लोक में कहीं दिए हैं कि अमुक प्रांत में ऐसी स्त्रियाँ हैं जो हवा में उड़कर कहीं स्थान पर जा सकती है, कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, लेकिन आज के समय में यह संभव नहीं है क्योंकि इतनी तपस्या कठिन कोई कर नहीं सकता। जयपुर में आज भी प्रभुपाद बताए थे कि आज भी ऐसा है कि जो आकाश में उड़ सकती है, ऐसी सिद्धि प्राप्त करके हो सकता है। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।
नहीं
लगता है,
नहीं लगता है।